इन दिनों उत्तर भारत के कई इलाके भारी बारिश के चलते परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हालात को प्रभावित किया है। पंजाब की स्थिति इस समय सबसे ज़्यादा ख़राब है। राज्य के लगभग 1400 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर समेत 23 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 30 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आपदा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं, इनमें पिछले काफ़ी समय से वर्षा काफ़ी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है।
पंजाब में बाढ़ के हालात को पिछले 40 सालों में सबसे ख़राब बताया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर इसको लेकर कहते हैं,
और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं।
पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की स्थिति भी बारिश और बाढ़ के चलते खराब बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में भी बारिश बाढ़ का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में 20 शहरों में हालात बिगड़े हुए हैं। आगरा, मथुरा, नोएडा में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर सकता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, आम लोगों को बाढ़ से कोई परेशानी नहीं होने वाली है।
यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है, हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं।
दिल्ली, NCR, हरियाणा और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में कामकाज पर असर पड़ रहा है। शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी राज्यों में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। इसके अलावा कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मराठा आरक्षण के लिए मुंबई में हो रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। मुंबई के आज़ाद मैदान में आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने जीत का दावा करते हुए अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार ने मराठा और कुनबी जाति को एक ही समुदाय में मानते हुए आरक्षण का प्रावधान किया है। हालांकि आरक्षण समूचे मराठा समुदाय के लिए नहीं है। आरक्षण का लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कुनबी जाति से अपना संबंध प्रमाणित कर देगा। इसके लिए हैदराबाद गजट को आधार बनाया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बारे में कहते हैं,
हमने हैदराबाद गजेटियर को लागू करने का निर्णय वहां पर लिया है, जिसमें पुराने रिकॉर्ड्स ये सारे मिलेंगे और उन रिकॉर्ड्स में जिनके खून के रिश्ते में अगर इस प्रकार से जाति का उल्लेख मिलेगा तो उनको उसका फायदा मिलेगा, जिसके कारण मराठा समाज को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फायदा इसके कारण मिलने वाला।
सरकार का कहना है कि मराठों को आरक्षण से अन्य पिछड़ा वर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा निकाले गए समाधान पर कहते हैं,
कहीं पर भी मराठा और OBC ऐसा विवाद नहीं होने देंगे। हम लोग जो निर्णय करेंगे वो निर्णय किसी एक का निकाल के दूसरे को देने का निर्णय नहीं होगा, दोनों को समान निर्णय करेंगे, दोनों को फायदा होगा ऐसा निर्णय करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमने किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन के दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ की है और कहा है कि देश ने आर्थिक स्वार्थ से प्रेरित चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। अमेरिका द्वारा 50% आयात शुल्क लगाए जाने के संदर्भ में उनके इस बयान को देखा जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कहीं। साथ ही सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा,
हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 33 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक हालात का उल्लेख किया।
फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। ग्लोबल पॉलिसी टर्मोइल हैज क्रिएटेड ह्यूज अनसर्टेनिटी। इन दीज टर्बुलेंट टाइम्स इंडिया स्टैंड्स एज अ लाइट हाउस ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ।
और अब थोड़ी चर्चा राजनीति की। इन दिनों कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को घेरने में जुटी हुई है। कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक में उसकी सहयोगी पार्टियों का आरोप है कि भाजपा चुनाव में गड़बड़ी करके सत्ता में आई है। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव चोरी का नाम इसे दिया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने और बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। एक लोकसभा सीट में गड़बड़ी का खुलासा वे पहले ही कर चुके हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों और दावों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कहते हैं,
राहुल गांधी के इस लोकतंत्र विरोधी षड्यंत्र और ये लोकतंत्र विरोधी बयानबाजी जो झूठ के पुलिंदे के ऊपर टिकती है, इससे सबको सचेत होना चाहिए।
बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए लगता है कि वोट चोरी की लड़ाई और तेज हो सकती है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न, SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।